You're listening to the Quince podcast.
ये जो यूपी है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में 57% वोट पड़े हैं। सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिलों में मतदान हुआ था, यानी 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें। मतदान प्रतिशत देखकर तो यही लग रहा है कि बाकी फेजेस की तुलना में वोटिंग कम हुई है। कई दिग्गज चेहरे भी इसमें शामिल थे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य और राजा भैया। इस एपिसोड में हम मोटा माटी ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वोटिंग नंबर्स पांचवें चरण के बारे में क्या बता रहे हैं।
लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स, यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना।
तो आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं क्विंट हिंदी के विकास कुमार। चुनाव शुरू होने से पहले लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ये लिख रहे हैं। स्वागत है विकास।
धन्यवाद प्रतीक।
तो विकास जी, जो पांचवा फेज अभी वोटिंग पूरी हुई है, तो कुल मिलाकर ये कैसा रहा, अगर खासकर पिछले 10 सालों की तुलना करें जो बाकी चुनावों के मतदान से?
प्रतीक, पांचवें चरण का चुनाव यूपी में जो हुआ है रविवार को, वो अन्य के मुकाबले काफी रोचक रहा है। और दूसरा इसका एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब की बार वोटिंग 4 चरणों की तुलना में कम हुई है। पहले फेज में करीब 62% वोटिंग हुई थी, दूसरे फेज में 64%, तीसरे फेज में 62.28% और चौथे फेज में 62.76% वोट पड़े थे, लेकिन अब की बार 57% ही वोट पड़े हैं। जबकि पांचवा चरण का जो चुनाव था वो दोनों पार्टियों के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा वो निर्णायक भूमिका में था। उसकी वजह ये थी कि पांचवें चरण में जहां पे मतदान जिन सीटों पे था वहां पे बीजेपी का बड़ा होल्ड था, तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेज माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं तो उससे थोड़ा निराशा हाथ लगी है बीजेपी को।
ओके, तो आपने जैसा बताया कि मतलब 4 चरणों की तुलना में ये पांचवें चरण में सबसे कम मतदान हुआ है, तो फिर इसे आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, किसको फायदा किसको नुकसान, क्या बताएंगे?
प्रतीक, पांचवें चरण की बात की जाए तो इसमें बीजेपी के लिए, चूंकि जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा निराश करने वाला है, वो उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, जो शहरी वोटर है वो अब की बार कम निकला है। मसलन आप देखेंगे कि प्रयागराज में कम वोटिंग हुई, बाराबंकी में कम वोटिंग हुई। प्रयागराज में करीब 50% वोट पड़े, बाराबंकी में 54% वोट पड़े। और अमूमन ये माना जाता है कि जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के लिए वोट करता है। 17 में और उसके पहले के लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न दिखा वो यही दिखा। लेकिन अब की बार क्या है कि शहरों में लगातार पहले चरण से लेकर के पांचवें चरण में ये दिखा कि जो शहरी वोटर है वो कम निकल रहा है। तो इससे कहीं कहीं एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसमें चुनाव और खास करके बीजेपी को लेकर उत्साह की कमी दिख रही है। और जो दूसरा है कि जो पांचवें चरण में 61 सीटें थी, इनमें अधिकतर सीटों में बीजेपी का होल्ड था 2017 की तुलना में अगर देखा जाए। और यहाँ पे कुर्मी वोटर बड़े निर्णायक भूमिका में था। 2017 और 2019 के जो चुनाव हुए उसमें कुर्मी वोटर कहा जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट किया, लेकिन अब की बार कुछ स्थानीय मुद्दों की वजह से, कुछ टिकट के बंटवारे को लेकर के कुर्मी वोटर बटा है। और इसमें जो तारीखों, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कुछ नेता जो बीजेपी से टूट करके एसपी में आए, उससे भी इस पर फर्क पड़ा है।
इसके अलावा जैसे कुर्मी वोटर्स तो पांचवें चरण में एक निर्णायक भूमिका में थे, लेकिन एक पासी वोटर्स की भी चर्चा है, तो मतदान जो आपने वोटिंग नंबर्स देखे उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या असर दिखा है?
प्रतीक, पांचवें चरण में 12 जिलों में मतदान था और इसमें 7 जिले ऐसे थे जहां पे जाटव और पासी वोटर की संख्या ज्यादा थी। 7 जिलों में बात करें तो कौशाम्बी आता है, कौशाम्बी में 36% पासी और जाटव वोटर हैं, और उसके बाद रायबरेली आता है, फिर बाराबंकी है, तो चित्रकूट है, अयोध्या है। तो इसमें क्या है कि पासी वोटर और जाटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मतदान में। जाटा वोटर अमूमन कहा जाता है कि वो मायावती को वोट करता है, लेकिन जो पासी वोटर है वो बड़े निर्णायक भूमिका में रहा है और किसी वो एक पार्टी का होके नहीं रहा है। पासी वोटर मायावती को लेकर के हमेशा शिकायत रही है कि जो गैर जाटा वोटर को लेकर कहा जाता है तो वो बसपा के साथ कई बार नहीं जाता है। तो और 2017-2019 में ये वोटर भी बीजेपी के साथ ही दिखा था, लेकिन अब की बार पासी वोटर में ऐसी बहुत सी ग्राउंड रिपोर्ट कई मीडिया संस्थानों ने की, द क्विंट ने भी की क्या रुख है वोटर्स का, तो इसमें ये भी निकल के सामने आया कि पासी वोटर्स का भी एक हद तक कुछ टूटा है, वो जो बीजेपी के साथ था वो भी टूटा है, तो उससे कई सीटों पर बहुत फर्क पड़ता दिख रहा है।
अच्छा, इसके पहले विकास जब हम दूसरे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे फिफ्थ वोटिंग फेज को लेकर, तो तब उन्होंने बताया था कि कुछ जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, तो इस बार जो मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर अगर वोटिंग पैटर्न को आपने करीब से देखा होगा तो क्या दिखा आपको, किस तरीके का पैटर्न देखने को मिला?
आप मुस्लिम वोटर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं अनुसूचित जाति और उसमें भी जो पासी वोटर की अधिकता है उसका आपको दिलचस्प आंकड़ा मैं बताता हूँ कि जिन 12 जिलों में कल मतदान हुआ उसमें 4 जिले ऐसे हैं जहां पे अनुसूचित जाति के वोटर की संख्या करीब 30% से ज्यादा है, और इन जगहों पे जो औसत मतदान हुआ है उससे 4-5% ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी कहीं कहीं अनुसूचित जाति का जो वोटर है वो घरों से निकला है, पोलिंग बूथ पर गया है और वोट किया है, तो नतीजों में इसका रिफ्लेक्शन जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं मुस्लिम वोटर की
जी।
हर बार की तरह से जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में लोगों ने देखा कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे वोट प्रतिशत बढ़ा है। पांचवें चरण में भी यही पैटर्न दिखा। पहले बात कर लेते हैं बहराइच की, जिन 12 जिलों में मतदान हुआ उसमें बहराइच में करीब 33% मुस्लिम वोटर है, श्रावस्ती में 31% की मुस्लिम आबादी वहां पर भी है, और दोनों जिलों को मिला दे तो 9 सीटें हैं बहराइच में और श्रावस्ती को मिला करके।
अच्छा,
पांचवें चरण में इन 9 सीटों में जो औसत मतदान हुआ वो जो कुल मतदान हुआ आप कह सकते हो जो 12 जिलों में उसमें यहाँ भी वोटिंग परसेंट से ज्यादा रहा। बहराइच में 55% वोट पड़े और श्रावस्ती में 58%। और अब 12 जिलों का औसत लेते हैं तो ये इनसे कम निकलता है।
कि वोटिंग परसेंटेज आने के बाद एक जो खास हॉट सीट जिसको कहे अयोध्या रही है, तो वहां मतदान क्या रहा, क्या लगा आपको वोटिंग परसेंटेज देखकर अयोध्या को लेकर?
अयोध्या की सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी पांचवें चरण के लिए, क्योंकि अयोध्या से ही राम मंदिर का मुद्दा निकला, लेकिन अब की बार जो वोटिंग देखने को मिली, जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है और एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है। अयोध्या विधानसभा में 5 सीटें हैं और इसमें अयोध्या में जो औसत आप देखेंगे तो 58% वोट पड़े, और अगर सीटों की बात कर ले तो अयोध्या में जहां पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पांचों सीटों को कंपेयर करें तो सबसे कम वोट पड़े। बीकापुर, गोसाईगंज, मिल्कीपुर और रुदौली, ये 4 सीटें हैं, एक पांचवी अयोध्या है। तो एक सवाल तो यही सामने आता है कि आखिर ऐसा क्यों, कि जब 2017 में और उसके पहले के जब चुनाव हुए 2012 में, जब राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में था, तब वहां पे आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो इससे ज्यादा है। 2012 में अयोध्या की सीट पर 60% वोट पड़े हैं और 2017 में 61%।
अच्छा,
और अब चूंकि राम मंदिर वहां पे बन रहा है उसके बाद भी सिर्फ 54% वोट पड़ना, तो एक ये समझ में आता है कि शायद लोगों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में था, हालांकि बहुत ज्यादा अब की बार चुनाव में गानों में बहुत सुनाई दिया, चुनाव प्रचार में सुनाई दिया, लेकिन
बिल्कुल
चुनाव के बाद जब वोट की बारी आई तब वो बहुत ज्यादा कन्वर्ट होता नहीं दिखा। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी चिंता की बात बीजेपी के लिए है कि आखिर अयोध्या में जब वोटिंग इतना कम हो रही है और बाकी जगहों पे ज्यादा हो रही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है?
आखिर में ये सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो दो प्रमुख चेहरे, खासकर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, तो उनकी एक सीट है सिरातू और इसके अलावा राजा भैया की सीट है कुंडा, तो यहाँ पर कैसे क्या वोटिंग हुई, क्या कितना प्रतिशत मतदान हुआ?
डिप्टी सीएम की सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा सीट पड़ती है और यहाँ पे 45 सालों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। अगर मैं वोट प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा सिराथू विधानसभा सीट, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सुर्खियों में रही कि काफी जगहों पर हर इसकी चर्चा हुई है। सिराथू में करीब 60% वोट पड़े हैं और आप अगर आंकड़े देखें तो पिछले 45 सालों में यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। अच्छा। यानी ये एक पैटर्न ये दिखाता है कि यहाँ पे वोटर में बहुत गजब का उत्साह दिखा। इसकी वजह थी, इसकी पहली वजह तो ये थी कि यहाँ से डिप्टी सीएम मैदान में थे, दूसरी वजह थी यहाँ से पल्लवी पटेल, सपा ने पल्लवी पटेल को उतारा था मैदान में। सिराथू विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि वहां पे कुर्मी वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो पल्लवी पटेल है वो उनका कुर्मी समाज में बहुत होल्ड है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ सिराथू सीट को लेकर के, यहाँ से एसपी कभी नहीं जीती है लेकिन अब की बार वो चुनौती दे रही है। उसकी वजह क्या है कि सिराथू सीट पर सबसे ज्यादा होल्ड बीएसपी कर रहा है, बीजेपी भी सिर्फ दो बार जीती है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जो बीएसपी के बड़े नेता थे चुनाव के पहले उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली, तो उससे सिराथू सीट पर सपा बड़ी स्ट्रांग हो गई और इसलिए वहां पे केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती मिली। अब प्रतीक, राजा भैया की कुंडा सीट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आंकड़ों को देखें तो 10 साल में सबसे कम वोट पड़े। इसकी वजह क्या थी, पहले आंकड़े बता देते हैं। कुंडा सीट पर साल 2012 में 52% वोट पड़े, 2017 में 57% वोट पड़े, लेकिन अब की बार सिर्फ 48% ही वोट पड़ा। इसकी एक वजह थी, यहाँ पर मतदान के दौरान दिन भर पथराव और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आती रही। गुलशन यादव जो कि एसपी उम्मीदवार थे, उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। तो दिन भर ऐसी खबरों के आने की वजह से मुझे लगता है कि वहां पे वोट कम पड़े। और दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात एक है कुंडा सीट की, कि यहाँ से राजा भैया लगातार जीतते रहे हैं लेकिन अब की बार इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसी से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की कई सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा भी किया है, लेकिन अब की बार चूंकि सपा के साथ में बड़ा मनमुटाव दिखा, तो ऐसे में अब की बार कुंडा सीट पर राजा भैया को चुनौती मिलती दिख रही है। जी प्रतीक।
ओके, यानी जो शुरुआती के तीन चरण थे उसमें ऐसा लगा कि जैसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी पार्टी के गठबंधन ने एक माहौल बनाया और लग रहा था कि पांचवें चरण में जो है बीजेपी का दबदबा दिखेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। तो 10 मार्च का इंतजार रहेगा, जिस दिन एग्जैक्ट जो परिणाम होंगे वो हमारे सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार बातचीत करने के लिए।
शुक्रिया प्रतीक।
तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.